जयंती है, भगवान श्री बलराम इसी दिवस पर गोकुल में प्रकट हुए। ब्रह्मांड के सारे जीवों के ऊपर कृपा बरसाने के लिए बलराम जी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। बलराम स्वयं श्री कृष्ण हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में बताया जाता है, वदन्ति तत् तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द्यते। अगर परम सत्य को जानना है तो इसके तीन स्तर होते हैं। ब्रह्म इति मतलब निराकार ब्रह्म, इससे ऊपर है परमात्मा इति मतलब हर प्राणी के हृदय में स्थित अंतर्यामी या परमात्मा, जिनको कि योगी जानने का प्रयास करते हैं उनके योगाभ्यास से, और इनके ऊपर है भगवान इति शब्द्यते। भगवान मतलब व्यक्ति परम सत्य, अंततः परम सत्य एक व्यक्ति है, केवल निराकार नहीं है। निराकार तो केवल उनके दिव्य शरीर का तेज है। तो इनका व्यक्तित्व क्या है, कौन है ये भगवान? जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं इस भौतिक ब्रह्मांड में, हम देवताओं तक पहुंचते हैं, देवताओं से ऊपर जाते जाते ब्रह्मा जी तक पहुंचते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के अंत नहीं है। उनके ऊपर उनके स्वामी हैं गर्भोदकशायी विष्णु, जो कि उनके पिता हैं। वही गर्भोदकशायी विष्णु अपने आप को विस्तार करते हैं और क्षीर सागर में क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में शयन करते हैं। और यही क्षीरोदकशायी विष्णु है जिनके पास ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर समस्या के समाधान के लिए जाते हैं और क्षीर सागर के तट पे पुरुष सूक्त प्रार्थना अर्पण करते हैं भगवान को। तो ब्रह्मा जी के ऊपर है क्षीरोदकशायी विष्णु, जो कि गर्भोदकशायी विष्णु के विस्तारित रूप है, और गर्भोदकशायी विष्णु हर एक ब्रह्मांड के भीतर रहते हैं। जितने ब्रह्मांड उतने गर्भोदकशायी विष्णु, और ये अनंत कोटि ब्रह्मांड जो हैं, ये महाविष्णु के त्वचा के छिद्रों से उत्पन्न होते हैं। जैसे महाविष्णु बाहर सांस लेते हैं तो ये सारे ब्रह्मांड उनके दिव्य शरीर से निकलते हैं, और जैसे महाविष्णु अंदर सांस लेते हैं तो ये सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड उनमें समा जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के ऊपर हैं ये तीन विष्णु रूप, जिनको पुरुष अवतार कहते हैं, नारायण पुरुष अवतार, भगवान के वो रूप जो इस भौतिक ब्रह्मांड से संबंधित हैं। लेकिन इनके भी ऊपर है वैकुंठ लोक। वैकुंठ लोक वो लोक है जो कभी नाश नहीं होता, और इस वैकुंठ लोक में अनंत कोटि ग्रह हैं, आध्यात्मिक लोक हैं वैकुंठ लोक। और इन वैकुंठ लोकों में भगवान की चतुर्व्यूह रूप निवास करते हैं। चतुर्व्यूह रूप हैं संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। ये चार इन पुरुष अवतारों से श्रेष्ठ हैं, और इनके ऊपर हैं बलराम, बलदेव, और इनके ऊपर हैं श्री कृष्ण, श्याम सुंदर, गोविंद। एते चांस कलहा पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। सारे जो भी विष्णु के रूप हैं और जो भी भगवान के रूप हैं, वो श्री कृष्ण गोविंद श्याम सुंदर से आते हैं। तो कृष्ण से आते हैं बलदेव या बलराम, फिर बलराम से आते हैं संकर्षण, फिर वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न इत्यादि। तो हम देख सकते हैं कि बलराम जी का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में रहते हैं। गोलोक वृंदावन वैकुंठ लोकों में से सबसे महत्वपूर्ण लोक है, अन्य सारे लोकों का उद्गम है। बल्कि ऐसा अगर हम कह सकते हैं साधारण भाषा में कि गोलोक वृंदावन वैकुंठ लोक की राजधानी है, सबसे महत्वपूर्ण शहर, और वहां पर श्री कृष्ण अपने आदि रूप में गोविंद रूप में निवास करते हैं और अपने प्रिय भक्तों के संग में नाना प्रकार की लीलाओं के रस का आस्वादन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यही एकमात्र काम है, उनका और कोई दूसरा काम नहीं है। अगर हम कहें कि अरे कृष्ण भगवान तो गीता में कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, ये सब आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत मुझसे उत्पन्न होता है, या भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदह पिता, मैं सारे प्राणियों का बीज प्रदाता हूं, लेकिन एक दृष्टि से ये ठीक है, लेकिन और एक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण को सृष्टि के उत्पत्ति से अनेक 84 लाख योनियों के बीज प्रदान करने से या इन भौतिक सृष्टि को चलाने से, भौतिक सृष्टि को चलाने की बात तो दूर है, आध्यात्मिक सृष्टि को वैकुंठ लोक को चलाने से कोई मतलब नहीं। गोविंद श्याम सुंदर श्री कृष्ण का एक ही काम है, बांसुरी बजाना, गवों को चराना, गोपियों के साथ रासलीला करना और नंद महाराज यशोदा और वरिष्ठ गोप गोपियों को आनंद देना ब्रज में, बस उनका यही एकमात्र काम है और कोई उनके कार्य नहीं है। और जो भी कार्य हैं वो सब बलदेव के माध्यम से होते हैं, इसलिए बलराम जी का इतना महत्व है। बलराम जी ये सारा बोझ संभालते हैं, लेकिन बलराम जी भी वो भी बड़े बुद्धिमान हैं, उनको भी तो श्री कृष्ण के लीला में शामिल होना है ना। वो सारे ये ब्रह्मांड का देखभाल करते रहेंगे, वैकुंठ लोकों का निर्माण करते रहेंगे, तो उनको कहां ये रस का आस्वादन करने को मिलेगा। वो भी चाहते हैं कि कृष्ण लीला में शामिल हो जाएं, वो भी कृष्ण के साथ गाय चराने ले जाएं, और वो भी जो ग्वाल बालों के संग लीला करें, वो भी नंद महाराज यशोदा मैया रोहिणी देवी की सेवा करें। तो बलराम जी भी बड़े बुद्धिमान हैं, वो क्या करते हैं, अपने आप को विस्तारित कर देते हैं, फिर वो संकर्षण बन जाते हैं और संकर्षण के कहते हैं चलो अभी आपको संभालना आगे की बात, अभी हम नहीं देखेंगे, आप आगे चल के वासुदेव बनो, अनिरुद्ध बनो, प्रद्युम्न बनो, नारायण बनो, आप अनंत शेष बनो, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को फणों पर धारण करो, आप ब्रह्मांडों को चलाओ पुरुष अवतार के रूप में, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु भी बनो आप, मैं कृष्ण के साथ गोलोक वृंदावन में रहने वाला हूं। तो ये है बलराम, जो कि सारे पुरुष अवतारों के स्रोत हैं, जो कि सारे नारायण रूपों के उद्गम हैं। बलदेव बलराम इनका नाम है। कृष्ण और बलराम दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। जब कृष्ण भगवान और अन्य कार्य करना चाहते हैं तो केवल अपने आप को विस्तृत करते हैं, और उनके दो तरह के विस्तार हैं या अंश हैं, एक को कहते हैं विभिन्नांश और दूसरे को कहते हैं स्वांश। विभिन्नांश मतलब विभिन्न अंश, वो है जीवात्मा, हम जीवात्मा भी कृष्ण भगवान के अंश हैं, लेकिन हम भिन्न हुए हैं उनसे। और दूसरे हैं स्वांश या कला। कला मतलब जो सारे अवतार, सारे विष्णु रूप, नारायण रूप, मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार इत्यादि, और इनमें से कलाओं में से सब प्रमुख हैं बलदेव। बलदेव एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के स्व अंश हैं, डायरेक्ट उनके विस्तारित रूप हैं। श्री कृष्ण से आते हैं बलदेव, और अन्य जो भी रूप आते हैं वो कृष्ण से नहीं आते, वो बलदेव से आते हैं, इसलिए उनको कला कहा जाता है। ये सारे भगवान कृष्ण के अंश हैं, या अंश के अंश के अंश और आगे बढ़ते हुए ऐसे कला। तो स्वांश कला, तो बलदेव जी स्व अंश हैं स्वांश, और सारे अन्य विष्णु रूप वो कला कहे जाते हैं। तो बलदेव स्व अंश हैं भगवान के, इसलिए भगवान से कभी अलग नहीं होते हैं। गोलोक वृंदावन में हमेशा रहते हैं, कृष्ण बलराम की जोड़ी हमेशा रहती है, जैसे कि राधा कृष्ण की जोड़ी हमेशा रहती है। राधा रानी ये भी तो कृष्ण के विस्तारित रूप है ना, सही है, सही है कि नहीं है? सही है। अगर बलराम ये भी कृष्ण के विस्तारित रूप है, और श्रीमती राधा रानी भी भगवान के विस्तारित रूप है, तो राधा रानी में और बलराम में अंतर क्या है, कोई बता सकते हैं? दोनों विस्तृत रूप है ना, फिर दोनों में अंतर क्या? राधा रानी अंतरंगा शक्ति है, और बलराम कभी सोचा है इस प्रश्न के बारे में? आदि पुरुष आदि गुरु हैं, ठीक है बलराम आदि गुरु हैं, लेकिन उनमें और राधा रानी में फर्क क्या है? दोनों भगवान के विस्तारित रूप हैं, वो तो है, लेकिन और आगे तत्व की बात नहीं। वैसे राधा रानी और कृष्ण में भी कोई अंतर नहीं है, राधा कृष्ण ना ही अन्य, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य। लादने शक्ति अस्मात सेवात्मानो अभिभुवि भुवा देह भेदम गतौतौ। जब चैतन्य महाप्रभु आए तो जो दो देह भेद था वो एक हो गया। पहले कृष्ण थे, कृष्ण राधा हुए, राधा कृष्ण, तो राधा कृष्ण में भी कोई अंतर नहीं है, कृष्ण बलराम में कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब राधा रानी और बलराम में कोई अंतर नहीं, नहीं। सही जवाब ये है, शक्ति और शक्तिमान, शक्तिमान से शक्ति आती है। राधा रानी भगवान की शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, लेकिन शक्ति, और कृष्ण क्या है? शक्तिमान। तो बलराम क्या है? वो भी शक्तिमान है, जबकि राधा रानी शक्ति है। इस दृष्टि से उनके विस्तारित रूप है। तो बलराम और कृष्ण में जो एकता है वो शक्ति मान के स्तर का है, और राधा रानी और कृष्ण में जो एकत्व है वो इसमें है कि शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता, जैसे कि सूरज और सूरज के किरणों में नहीं होता। तो ये है बलराम। बलराम भी पूर्ण शक्तिमान है। बलराम में, कृष्ण में और अन्य सारे जो अवतार हैं उनमें भी एक दृष्टि से देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है। दीपा चिरे वही दशांतरम अभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्म यस्ताद्रिगे वही च विष्णुतया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं कि जैसे एक दीप से दूसरा दीप जलाया जा सकता है उसकी अग्नि से, और ये सारे समान धर्म, ये सारे दीप जो हैं समान शक्ति से जलते हैं, एक दृष्टि से वो दिखाई पड़ते हैं, सबकी शक्ति एक है, सबका तेज, सबका प्रकाश एक ही है। हालांकि एक मूल दीप था जिससे कि अन्य सारे दीप जले, ठीक उसी तरह से यस्ताद्रिक एव हि च विष्णु तया विभाति, अन्य जो भी विष्णु रूप हैं वो क्या है, वो अन्य दीप के बराबर है। और मूल दीप कौन सा है, गोविंद माग पुरुषम तम हम भजामि। तो जिस प्रकार से एक दीप से अनेक दीप उत्पन्न हो सकते हैं लेकिन सारे दीपों में कोई अंतर नहीं, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण से ये अनेक दीप, ये अनेक अवतार विष्णु तत्व उत्पन्न होते हैं और इनमें कोई अंतर नहीं, लेकिन फिर भी मूल है श्री कृष्ण और उनका सबसे पहला दीप जो उनसे आता है वो है बलदेव। इसलिए कृष्ण और बलराम दोनों कभी भी अलग नहीं होते हैं गोलोक वृंदावन में। अलग कब होते हैं, केवल जब चुपके से कृष्ण रासलीला करने निकल जाते हैं, जब उस समय बलराम जी सोए हुए होते हैं, नहीं तो दिन में क्या करते हैं कृष्ण बलराम, गाय चराने जाते हैं गोलोक वृंदावन में। ये नित्य लीला है, जैसे कि रासलीला भी नित्य लीला है भगवान की। दो प्रकार की लीलाएं होती हैं भगवान की, जो भगवान के धाम में हमेशा लीलाएं चलती हैं उनको नित्य लीला कहते हैं, और ऐसे थोड़ी लीलाएं होते हैं जो भगवान श्री कृष्ण भौतिक ब्रह्मांड में अंदर आकर प्रकट करते हैं, इनको नैमित्तिक लीला कहते हैं। नैमित्तिक लीला मतलब जो कभी कभी प्रदर्शित किए जाते हैं, जैसे कि असुरों का वध करना, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा जाते हैं, द्वारका जाते हैं, लेकिन वृंदावनम प्रत्यज्य पदम एकम न गच्छति, वृंदावन को छोड़कर एक कदम भी बाहर कृष्ण भगवान नहीं जाते हैं गोलोक वृंदावन। लेकिन यहां पर ऐसे प्रतीत होता है कि वो वृंदावन छोड़कर मथुरा द्वारका जा रहे हैं, तो ये एक नैमित्तिक लीला है जो केवल भौतिक ब्रह्मांड के भीतर प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार से गाय चराने की लीला, रास लीला, माता यशोदा नंद महाराज की सेवा, ग्वाल बालों के संग में क्रीड़ा, ये सब नित्य लीलाएं हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में करते हैं हमेशा हर दिन। वहां भी दिन है, वहां भी रात है, लेकिन वहां के दिन और रात यहां के दिन और रात की तरह नहीं है। यहां के दिन और रात में रज गुण, तम गुण, सत्व गुण, इन सब का प्रभाव पड़ता है। यहां रात का समय तमोगुण का होता है, दिन का समय रजगुण का होता है, प्रातःकाल सत्व गुण का समय होता है, लेकिन वहां तो विशुद्ध सत्व आध्यात्मिक गुण वहां विद्यमान है, वहां पर तीन गुणों का कोई प्रभाव नहीं होता। तो रोज वहां पर ये लीला चलती रहती है और भगवान की दिनचर्या रहती है, फिक्स टाइम टेबल रहता है भगवान का। सुबह उठते हैं, फिर यशोदा माता उनको नहलाती हैं, उनको भोजन प्रसाद खिलाती हैं, तैयार श्रृंगार करती हैं, और फिर वो गाय चराने के लिए अपने बलराम और ग्वाल बाल मित्रों के साथ में निकल जाते हैं। जब वन में जाते हैं तो वहां कुछ खेल कूद करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, और कभी कभी बीच में निकल के गोपियों से मिलने जाते हैं, फिर से आ जाते हैं, और रात में यशोदा मैया उनको सुला देती हैं और अच्छे बच्चे की तरह सो जाते हैं, फिर जब सब सो गए फिर से उठ के रासलीला करने चले जाते हैं। तो ये सब नित्य लीलाएं चल रही हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण बलराम के संग यहां भौतिक ब्रह्मांड में प्रकट होते हैं तो उनकी जो लीलाएं यहां पर होती हैं, जिनको भौम लीला कहते हैं, ये लीलाएं नैमित्तिक लीला और नित्य लीलाओं का मिश्रण है। मतलब थोड़ी लीलाएं जो भगवान यहां प्रदर्शित करते हैं वो नित्य लीलाएं हैं जो कि गोलोक वृंदावन में रोज होते हैं, जैसे कि गाय चारण, गोचारण लीला, रास लीला इत्यादि। और थोड़ी लीलाएं जैसे हमने पहले बताया नैमित्तिक लीलाएं जो कि गोलोक वृंदावन में नहीं होती हैं, जिनका रस भगवान श्री कृष्ण को गोलोक वृंदावन में भी नहीं मिलता, वो यह भौतिक ब्रह्मांड में आकर मिलता है। देखिए कितनी अद्भुत बात है, जो चीज भगवान श्री कृष्ण को उनके धाम में नहीं मिलती वो यहां पर उनको भौतिक ब्रह्मांड में मिलती है। असुरों को वध करने का आनंद उनको वहां नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? गोलोक वृंदावन में ये उनको आनंद क्यों नहीं मिलता? वहां असुरी नहीं है, वहां कौन असुर हो सकता है? भगवान को वीर रस का आस्वादन करना पड़ता है तो यहां आना पड़ता है। और गोलोक वृंदावन को छोड़कर मथुरा जाने का जो की जो लीला है वो वहां पर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वृंदावन छोड़ के ही नहीं जा सकते, वो तो वृंदावन में हमेशा रहते हैं। तो इस तरह से भौम लीला, भौम वृंदावन लीला में भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ में रहते हैं और नित्य और नैमित्तिक लीलाओं दोनों को वो करते हैं। तो जब वृंदावन की बात आती है तो कृष्ण बलराम दोनों साथ में रहते हैं हमेशा, बचपन से ही दोनों साथ साथ होते आए। और इसके बाद में जब थोड़े बड़े हो गए तो ग्वाल गौओं को चराने के पहले वत्सों को चराया करते थे, गाय के बछड़ों के वत्सों को। अब दोनों कृष्ण और बलराम तो स्वयं भगवान हैं, इसलिए हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये अभी छोटे थे, अभी बड़े हो गए, अब उनकी शक्ति बढ़ गई, बुद्धि बढ़ गई, अब वो ज्यादा अभी जिम्मेदार हो गए। भगवान किसी भी अवस्था में हो, भगवान भगवान ही रहते हैं। मनुष्यों को फर्क पड़ता है, जब लड़का बच्चा होता है तो पिता सोचते हैं कि ठीक है अभी तक व्यवसाय संभालने का योग्य नहीं है, अब बड़ा हो गया, समझदार हो गया, बुद्धिमान हो गया, अब इसको हम व्यवसाय सौंप सकते हैं। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं होता। भगवान तो चाहे बाल लीला में हो, कुमार लीला में हो, किशोर लीला में हो, वो भगवान ही रहते हैं। तो ये सारे जो अलग अलग वय हैं, जो आयु हैं, वो इनको स्वीकार करते हैं केवल अलग अलग रसों को स्वीकार करने के लिए। क्योंकि जो बाल लीला में भगवान वात्सल्य रस का आनंद ले सकते हैं वो उतना रस किशोर लीला में नहीं ले सकते। हालांकि रस है वात्सल्य रस का, लेकिन जो आनंद माता यशोदा को कृष्ण की सेवा करने में मिली बाल्य अवस्था में, और जो रोहिणी माता को मिली बलराम जी की सेवा करने में, वो किशोर अवस्था में उतनी नहीं मिली। इसीलिए कुमार अवस्था में या बाल्य अवस्था में कृष्ण और बलराम ने वात्सल्य रस के आनंद का भंडार लूटा। और जैसे वो आगे गए पौगंड अवस्था में 6 साल से लेकर 10 साल तक, उस समय उन्होंने सख्य रस के आनंद का भंडार लूटा। पहले 5 साल तक कुमार अवस्था कहते हैं कौमार, और 6 से 10 इसको पौगंड कहते हैं। तो कुमार अवस्था में वात्सल्य रस और पौगंड अवस्था में सख्य रस, और किशोर अवस्था में जब वो प्रवेश किए, मतलब किशोर अवस्था होती है 11 साल से लेकर 15 साल तक, और उसके बाद में वास्तव में युव अवस्था शुरू होती है। किशोर अवस्था को भी नव युव अवस्था कहते हैं, नव यौवनम च। तो किशोर अवस्था में भगवान श्री कृष्ण ने कौन से रस का आस्वादन किया? वात्सल्य रस, सख्य रस और माधुर्य रस, क्योंकि इस आयु में खास करके उन्होंने गोपियों के साथ में रासलीला की। तो जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम कुमार अवस्था में थे तो वात्सल्य रस के प्रभाव से नंद महाराज ने सोचा कि भी छोटे बच्चे हैं, वो बड़े गाय कैसे संभालेंगे, गायों के सींग होते हैं, बड़े होते हैं, वो तगड़े मजबूत होते हैं, ये छोटे बच्चे उनको क्या संभालेंगे। तो इसलिए नंद महाराज और अन्य गोपों ने सोचा कि इनको छोटे बछड़ों की जिम्मेदारी देनी चाहिए। बछड़ों को, गायों को दिन के समय अलग किया जाता था, क्योंकि गाय चरने जाएंगी, घास खाएंगी, और गाय दूसरे जगह अपना चारा खाएंगी, क्योंकि अगर वो हमेशा गायों के साथ रहेंगे तो फिर गाय का दूध पी जाएंगे, सारा दिन भर वहीं पर रहेंगे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बड़े सुंदर ढंग से कहते हैं, तौ वत्स पालकौ भूत्वा सर्वलोकैकपालकौ सप्रातराशौ गोवत्सांस चारयन्तौ विचेरतुः। वो कहते हैं सर्वलोकैकपालकौ, हालांकि अनंत कोटि ब्रह्मांडों के पालक हैं, फिर भी तौ मतलब ये दोनों कृष्ण और बलराम वत्स पालकौ भूत्वा वत्स पालक बने, छोटे गाय के बछड़ों के पालक वो बन गए। इस प्रकार से भगवान लीला करते हैं। भगवान हालांकि इतने बड़े शक्तिशाली अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, लेकिन फिर भी लीला कैसे करते हैं? मानो कि वो छोटे गाय के बछड़ों के पालक हैं। गायों की देखभाल नहीं कर सकते, अभी तक उनके भुजाएं बहुत कोमल हैं, अभी तक शक्ति नहीं आई है। ये है भगवान की मधुर लीला। और फिर आगे चल के जब वो पौगंड अवस्था की प्राप्ति करते हैं, तो उस समय गोपाष्टमी के समय नंद महाराज और अनगोप कृष्ण बलराम इत्यादि को गाय देते हैं। बड़े चलो अब गाय की तुम चराने के लिए ले जाओ। पिछले साल और उसके पहले साल भी थोड़ी बहुत गोचारण लीला के ऊपर चर्चा हुई थी, आपको याद होगा, याद है? तो शुकदेव गोस्वामी बड़े सुंदर रूप से वर्णन करते हैं। ततश्च पौगण्डवयः श्रितौ व्रजे बभूवतस्थौ पशुपाल सम्मतौ गाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदैर् वृन्दावनं पुण्यमतीव च क्रतुः। ततश्च पौगण्डवयः श्रितौ व्रजे, व्रज के अंदर इन दोनों ने, बभूवतः कृष्ण और बलराम ने, पौगंड अवस्था की प्राप्ति कर ली। और पौगंड अवस्था अर्थात 6 वर्ष की आयु। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? तो पशुपाल सम्मतो, अभी गायों को चरना शुरू कर दिया उन्होंने। जबकि पहले वो क्या थे? वत्सपालक थे, अभी गोपालक हो गए हैं। गाश्चारयन्तो सखिभि समं पदैर् वृंदावनम पुण्यमतीव चक्रतुः। अब गाह चारयन्तो, गायों को चराना उन्होंने शुरू किया। सखी भी अपने सखाओं के संग में, समम पदैर वृंदावनम पुण्यमतीव चक्रतुः, और वृंदावन को अपने चरण कमलों के स्पर्श से धन्य कर दिया, पुण्य कर दिया। इस प्रकार से कृष्ण और बलराम दोनों गाय चराने लगे अपने सखी भी, अपने सखियों, अपने सखों के संग से। तो सुंदर हम दृश्य वर्णन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं अपने मन में कि जैसे यहां भी हम देख रहे हैं, इस तस्वीर में भी कृष्ण बलराम वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। यह वानप्रस्थ का अर्थ अलग होता है, वन में प्रस्थान करना यह हमारे लिए अलग होता है, लेकिन वहां वन में प्रस्थान करना मतलब आनंद लेना। कृष्ण भगवान के लिए वन में प्रस्थान करना आनंद की बात होती थी। हमेशा कृष्ण भगवान जल्दी से उठते थे, कब मैं जाऊंगा वन में, कब मैं वहां जाकर खेलकूद करूंगा, गांवों को चराऊंगा और मेरे मित्रों के साथ में खेलूंगा। सारे जो सखा होते थे वो भी हमेशा रात को सोते समय सोचते, कब सुबह आएगी जब हम कृष्ण के साथ में गाय चराने ले जाएंगे, हम कृष्ण के संग में रहेंगे। रात को हमें कृष्ण से दूर रहना पड़ता है, उसी प्रकार से हमें भी रात में सोते समय राह देखनी है, कब सुबह आएगा जब हम मंगल आरती में आएंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, कब सुबह आएगा जब हम माला लेकर भगवान कृष्ण का नाम लेंगे, वही आतुरता से प्रातःकाल। तो फिर ये सुबह जो है ये भी हमारे लिए वृंदावन हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब कृष्ण और बलराम वन में जाते थे तो सारे ब्रजवासी उनको एकत्र होकर देखते थे, आंख फाड़ फाड़ के। कभी ये चाहते नहीं थे कि ये दृश्य हमारे आंखों से दूर चला जाए। तन्माधवो वेणु मुदीर यन्वितो गोपेर गृणभिः स्वयशो बलान्वितः पशून् पुरस्कृत्य पशव्यमाविशद् विहर्तु कामः कुसुमाकरं वनम्। भगवान श्री कृष्ण वन में गए, आविशद मतलब प्रवेश किया। क्यों उन्होंने वन में प्रवेश किया, क्या कारण था? जब यहां संसार में वानप्रस्थ लेने को कहा जाता है तो क्यों जाते हैं वन में लोग? वानप्रस्थ का कार्य क्या होता है? वानप्रस्थ आश्रम में मुख्य कर्तव्य क्या होता है? तपस्या। जब व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम से गृहस्थ आश्रम जाता है, गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ, तो वानप्रस्थ में मुख्य कार्य क्या होता है? तपस्या। ब्रह्मचारी में क्या होता है? अध्ययन, अध्ययन और सेवा। तपस्या तो सभी आश्रमों में है, लेकिन खास करके ब्रह्मचारी आश्रम में अध्ययन, सेवा, यज्ञ। गृहस्थ आश्रम में दान, तपो, यज्ञ, सारे समाज की सेवा करना, भगवान की सेवा करना, प्राणियों की सेवा करना, यज्ञ करना, दान करना, ये सब गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य। वानप्रस्थ आश्रम में क्या? तपस्या। लेकिन आजकल रिटायर्ड लाइफ में कौन तपस्या करता है? रिटायर्ड लाइफ मतलब आराम से टीवी के सामने बैठ जाओ और अपने पोतों के साथ में खेलो, ये वानप्रस्थ आश्रम हो गया है। और जब लड़का और जो बहू है वो अपने अपने नौकरी के लिए जाएंगे तो बच्चों को संभालो, ये वानप्रस्थ आश्रम आजकल का हो गया है। लेकिन वानप्रस्थ आश्रम तपस्या के लिए है। तपस्या घर में बैठे बैठे नहीं हो सकती है। हो सकती है घर में तपस्या? जब इतने अच्छे सोफा सेट पड़ा है, जब बिस्तर पड़ा है, घर के सारे आराम पड़े हैं, तो भले ऐसे वातावरण में तपस्या कैसे हो सकते हैं? संन्यास आश्रम में कार्य क्या है? प्रचार, प्रचार करना है, जगह जगह घूमना और कृष्ण की वाणी देना सबको। लेकिन जब भगवान वन में जाते हैं, क्यों जाते हैं? विहर्तु कामः, विहार करने के लिए, उनको लीलाओं का रस लेना है। इसलिए भगवान जब वन में जाते हैं तो देखिए यहां पर है, कैसे जाते हैं? तन माधवो वेणुम उदीरयन, वेणु बजाते बजाते जाते हैं। और कैसे जाते हैं? वृतो गोपये गृणद्भिः, वृतो उनको उनके घेर के उनके ग्वाल बाल मित्र हैं, जो क्या कर रहे हैं? गृणद्भिः स्वयशो, जो कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। जैसे जैसे वन में प्रस्थान कर रहे हैं, वैसे वैसे कृष्ण भगवान हुए हैं, घिरे हुए हैं किसके साथ में? गोपों के साथ में। बल अन्वितः, बल मतलब बलराम, और बलराम कृष्ण के साथ में हैं। देखिए कृष्ण बलराम आगे आगे चल रहे हैं, साथ में सब गोपगण सखा हैं उनके, जो कृष्ण और बलराम का गुणगान करते जा रहे हैं। पशुन पुरस्कृत्य पशव्यमाविशत विहर्तु कामः कुसुमाकरम वनम्। और ये वन में क्या है? पशुन पुरस्कृत्य, पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में आहार है, और फिर नाना प्रकार के सुंदर फूल भी हैं, कुसुमाकरः। और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने देखा इतना सुंदर वन, इतना सुंदर दृश्य। कृष्ण बलराम दोनों बड़े प्रभावित हुए वन के सौंदर्य से। और वृंदावन में क्या चल रहा था? नाना प्रकार के पक्षियां कू कू कू, कोयल कह रहे हैं आवाज, मधुर आवाज में भंवरे इधर उधर गुनगुना रही हैं, और पेड़ फूल सब यहाँ इतने प्रफुल्लित अवस्था में हैं, सब कृष्ण बलराम का स्वागत कर रहे हैं। तो उस समय कृष्ण भगवान बड़े प्रसन्न होकर बलराम की ओर देखने लगे, और अपने भाई, अपने बड़े भाई दाऊजी, बलराम जी को दाऊजी कहते हैं, बड़े भाई ब्रज में, दाऊजी बलराम की प्रशंसा करने लगे, उनका गुणगान करने लगे, और ये वर्णन करने लगे कि किस तरह से देखो बलराम जी, ये वृंदावन के जो भी पशु प्राणी पेड़ हैं, आपका स्वागत किस तरह से कर रहे हैं। और बताते हैं कि देखो ये जो सुंदर वृक्ष हैं, इतने विशाल वृक्ष, ऐसे लग रहे हैं कि मानो कोई राजा है। राजा जब खड़ा होता है तो बड़े शान से खड़ा होता है, सीधे ऐसे ये बिल्कुल राजा के समान खड़े हैं, और उनके इतने भारी भारी शाखाएं हैं, भारी भारी फल हैं, सुंदर फूल हैं, और फल इतने हैं कि ये शाखाएं झुक गई हैं। और कृष्ण भगवान क्या देखते हैं कि बलराम जी ये पेड़ ऐसे झुके हुए क्यों है पता है? ये आपको नमन कर रहे हैं, आपको प्रणाम करने के लिए वो ऐसे झुके हुए हैं। वैसे कृष्ण भगवान को प्रणाम करने के लिए और बलराम दोनों को प्रणाम करने के लिए वृक्ष ऐसे झुके हुए थे, न केवल फलों के बोझ से, भार से। लेकिन कृष्ण सारा श्रेय बलराम को दे रहे हैं। मतलब हमें समझना चाहिए कि कोई अगर हमें कुछ किसी चीज के लिए श्रेय देता है कि आपने बहुत अच्छा ये किया, तो हमें उसको पास करना चाहिए। किसको करना चाहिए? दूसरे भक्तों को श्रेय देना चाहिए। नहीं, हमारा नहीं, ये इनका श्रेय है, हमने कुछ नहीं किया। और जब निंदा आ जाती है, कोई भूल गलती चूक हो जाती है और दूसरे के ऊपर वो गलती आती है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे ऊपर ले जाना चाहिए। कृष्ण भगवान सिखा रहे हैं, जब श्रेय आ रहा है, सम्मान आ रहा है, उनको मालूम है कि उन्हें देखकर ये सारे वृक्ष झुक रहे हैं, लेकिन देर बलराम जी आपको, आपको देखकर ये झुक रहे हैं। मतलब वास्तव में कृष्ण बलराम एक है, तो दोनों को वो सम्मान दे रहे हैं। चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, फलवंत वृक्ष आर गुणवंत जन नम्रता से तहार स्वभाव अनुक्षण। दो प्रकार के चीज हैं जो झुकते हैं, वो क्या है? फलवंत वृक्ष। फलवंत वृक्ष मतलब जिस वृक्ष में बहुत सारे फल हैं, और फल के भार की वजह से उसकी शाखाएं झुक जाती हैं, बराबर है ना। और दूसरे हैं गुणवंत जन, जो आदमी बड़ा गुणवान है, जिसके जो सुसंस्कृत है, जिसको आर्य सभ्यता क्या है ये मालूम है, जो वास्तव में मनुष्य है, वो झुकता है जब देखते हैं हरे कृष्णा। या जो भगवान के सामने, किसी के भी सामने झुकने के लिए कभी हिचकिचाता नहीं है, नम्रता यही स्वभाव अनुलक्षण अनुक्षण। तो दोनों का स्वभाव होता है नम्रता, जो पेड़ में बहुत सारे फल हैं और एक गुणवंत आदमी में। तो देखिए ये पेड़ कृष्ण बलराम के सामने झुक रहे हैं, लेकिन ऐसे कितने सारे लोग हैं जो भगवान के सामने झुकना नहीं चाहते हैं। मंदिर में भी आते हैं तो फिर भी झुकते नहीं हैं। जैसे राजा किसी प्रणाम, कोई राजा को प्रणाम करता है, राजा कैसे प्रणाम करता है उनको? तो जब आते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में गुरु गोस्वामी कहते हैं प्रणाम करना चाहिए, झुकना चाहिए, अपने शरीर को झुकाना भगवान के सामने, भक्तों के सामने, ये बहुत आवश्यक चीज है। ये मनुष्यता का लक्षण है, जो बहुत सुसंस्कृत मनुष्य होता है। और अगर कोई व्यक्ति भगवान के सामने झुकता नहीं है, तो मतलब वो पेड़ से भी निम्न श्रेणी का आदमी है। वृंदावन के पेड़ भी झुक रहे हैं बलराम और कृष्ण के सामने। और फिर भगवान कहते हैं कि देखिए आपके चरण कमल बड़े बड़े देवताओं के लिए भी पूजनीय हैं, और आपके चरणों के नमन करने के लिए ये पेड़ जो हैं ये झुक रहे हैं। और आपके चरणों में, जो कि सारे ब्रह्मांड के अंधकार को दूर कर सकते हैं, उनको वो अपने फल अपने फूल अर्पण कर रहे हैं। क्यों? वो तो कुछ बोल नहीं सकते, वो हरे कृष्णा दंडवत ऐसे कुछ बोल नहीं सकते हैं। और अर्पण करते हैं तो कैसे? अपनी शाखाओं से यूं अर्पण कर रहे हैं कि आपके चरण कमलों में, क्योंकि ऊपर से करेंगे तो क्या, सर पे तो अर्पण नहीं कर सकते, इसलिए झुके हुए हैं, चरणों में, चरण कमलों में अर्पण कर रहे हैं। फिर कृष्ण भगवान बलराम को कहते हैं देखिए इन भंवरों को, गुन 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 के आवाज कर रहे हैं, सुंदर भंवरों की आवाज है। और ये भंवरों की आवाज तो क्या, ये तो आपका गुणगान कर रहे हैं। तो वृंदावन के भंवरे जो है वो केवल गुनगुन गुनगुन नहीं करते। अभी हमने कहीं ये वर्णन तो नहीं पढ़ा है कि वृंदावन में कोई मच्छर हुए होंगे, अभी पता नहीं हुए होंगे, लेकिन हम जानते हैं कि मच्छरों की आवाज हमारे कानों में आती है तो वो कैसे होती है, आती है तो कैसे लगता है, कोई आनंद हमें नहीं होता उसमें, है ना। तुरंत हमारे हाथ यूं चले जाते हैं, मच्छर को मारना चाहते हैं, यूं यूं करने बैठते हैं। लेकिन अगर ऐसे कोई मच्छर होते वृंदावन में, तो अवश्य वो भी कृष्ण की कीर्ति का गान ही करते, जैसे कि हम भंवरे कर रहे हैं। भंवरे के गुणगान क्या है? कृष्ण कह रहे हैं बलराम जी आपका गुणगान कर रहे हैं। अभी हम मनुष्य समाज में, हमें बहुत तकलीफ होती है, किसी को कन्नड़ आता है तो मराठी नहीं आता, मराठी आता है तो तमिल नहीं आता, तमिल आता है तो पंजाबी नहीं आता, है ना। ये भाषाओं का बड़ा समस्या है यहाँ पर, लेकिन कृष्ण भगवान को सारी भाषाएं आती हैं, तो वो समझ रहे हैं कि भंवरे क्या बोल रहे हैं। भंवरे अपनी भाषा में बोल रहे हैं, गुनगुन 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 कर रहे हैं, और कृष्ण भगवान समझकर बोल रहे हैं कि हे बलराम जी देखिए आपका गुणगान कर रहे हैं ये, और आपके पीछे 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 जा रही है, आपको त्यागने के लिए वो तैयार नहीं है, और पीछे पीछे जाते जाते आपका गुणगान कर रहे हैं। जैसे कि जब एक राजा पथ में जाता है तो उसके पीछे सूत माघद इत्यादि वंदीगण होते हैं जो उनका गुणगान करते हैं, महाराजा दिराज की जय हो, ये इन्होंने उनको जो गाथाएं गाते हैं उनके परिक्रम पराक्रमों की, ये राजा पधार रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से ये भौरे जो है पीछे पीछे बलराम जी के जा रहे हैं। तो देखिए आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं बलराम जी, स्वयं कृष्ण भगवान बलराम जी का गुणगान कर रहे हैं। और जैसे अंदर प्रवेश करते हैं क्या देखते हैं कृष्ण कि वहां पर मोर है, मोर नृत्य कर रहे हैं, नृत्यंती अमिशिखिना इद्य, मोर नृत्य कर रहे हैं, आपको आपके साथ आपको देखकर इतने आनंदित हो गए हैं ये मोर कि नाचना शुरू कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमें भी जब हम भगवान का दर्शन करते हैं सुबह, हमें भी आनंद से नृत्य करना चाहिए भगवान के सामने, भक्तों को देखकर भी आनंदित होना चाहिए, हरि बोल प्रभु जी, या माता जी, अगर आप माता जी माता जी को देख रहे हैं कैसे हैं, प्रसन्न होना चाहिए वैष्णव को देखने के, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए वैष्णव को देखकर उदास होना। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं देखो हे बलराम जी ये मोर ने आपका दर्शन किया, इतने प्रफुल्लित हो गए कि अभी नाचने लगे हैं, और ये जो कोयल है आपको देखकर सुंदर गीत गा रहे हैं, कुहू कुहू कह के गा रहे हैं, और वास्तव में ये कुहू कुहू तो क्या, ये तो वैदिक मंत्र है ये बोल रहे हैं, कृष्ण समझ रहे हैं ना, ये कोयल उनकी भाषा में वैदिक मंत्रों से स्तुति कर रहे हैं बलराम जी की। और कहते हैं कि जो हरिणियां हैं ये कैसे भला कुछ प्रार्थना वो बोल नहीं सकते, वो ना तो पेड़ों की तरह से झुक के उनको नमन कर सकते हैं, तो वो कैसे आपकी स्तुति कर रहे हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं, केवल उनके प्रेम भरी दृष्टि से, प्रेम भरे आंखों से वो आपकी ओर देख रहे हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि वो आपके चरणों में नमन कर रहे हैं। देखिए आंखों की भाषा बड़ी तेज होती है। एक बार एक माता पिता आए थे अपने बच्चे के बारे में शिकायत करने के लिए, कहते ये बच्चा बहुत क्रोध करता है और इसकी क्रोध इसकी आंखों में है ज्यादा, वैसा बोल रहे थे, ये आंखों से जब भी कुछ होता है तो ऐसे आंख करता है मानो कि शिवजी की तरह सारे ब्रह्मांड को जलाना चाहता है। तो माता पिता कहते हैं ये बच्चा बड़ी बड़ी आंखें सबको करता है, तो अभी से उसको अगर वश में नहीं किया जाए तो बड़े होकर फिर क्या करेगा। तो आंख जो है इससे आंखों की भाषा ये अलग ही भाषा होती है। तो पशु समाज में भी आंखों की भाषा से बात हो सकती है। गायों के आंख आपने देखे हैं, गायों को आंखों से उनकी ममता आपको पता चल सकता है। तो ये हिरणिया जो है बलराम जी को का नमन कैसे कर रहे हैं, केवल अपने प्रेममयी आंखों से। और फिर आगे चलते हैं और कृष्ण भगवान एक सुंदर श्लोक भी बताते हैं, ये भी बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। धन्येय मध्य धरणी तृण विरुधस्व पादस्पृशो द्रुमलतः करजाभिमृष्टा नद्योद्रयः खगमृगाः सदयावलोकये गोप्योन्तरेण भुजयोरपि यस्पृहा श्रीः। धन्य इयम् अद्य धरणी, हे बलराम जी धरणी, धरणी मतलब कौन, पृथ्वी माता। धन्य इदम्, ये पृथ्वी माता धन्य हो गई हैं, क्यों, तृण विरुधस्त्वत् पादस्पृशो, क्योंकि स्पर्श इनसे हुआ है और आपके नाखूनों से, और जो भी यहां पे नदियां हैं, नद्यो अद्रयः, अद्रय मतलब जो नाना प्रकार के माउंटेन्स क्या पहाड़ हैं पेड़ हैं, उन सबको आपके जो कृपा दृष्टि उनके ऊपर पड़ गई है, इसलिए आप बड़े धन्य हो गए हैं। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं अभी एक एक को चुन चुन कर बतला रहे हैं कि ये सब कितने भाग्यशाली हैं, क्योंकि बलराम जी की कृपा उनके ऊपर हुई है। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने स्वयं बलराम जी का गुणगान किया। और जैसे जैसे वो आगे चलते रहे, कृष्ण बलराम दोनों साधारण ग्वाल बाल की तरह क्रीड़ा करने लगे वृंदावन के अंदर वनों में, जिनका वर्णन सुंदर ढंग से सुखदेव गोस्वामी करते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कभी कभी जब ये भौंवरे उनके पीछे पीछे आते थे तो इतने पागल हो जाते, उन्मत्त हो जाते थे आनंद से कि वो केवल आंख बंद करके गीत गाते थे भौंवरे। और जब ये गीत गाते थे इस प्रकार से, कृष्ण और बलराम उनके साथ साथ में जाके उनकी नकल करके वो भी गीत गाते थे, वैसे ही जैसे भौंवरे गा रहे हैं, गुनगुनाने लगते थे, उनकी भाषा में वो भी बोलने लगते थे। कल्पना कीजिए सुंदर दृश्य, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, जिनके अंश के अंश के अंश के अंश उनके त्वचा के से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, वो अभी भौरों के साथ में चलते चलते उनका गीत गा रहे हैं। कितनी अद्भुत बात है, जिसके हृदय में श्रद्धा है, प्रेम है, वही केवल इस तत्व को समझ पाएगा। और फिर वहां पर तोते थे, वो तोते भी अपनी आवाज तोतली आवाज में बोल रहे थे, और कृष्ण बलराम दोनों तोते की आवाज की नकल करते, तो कभी कोयल के मधुर आवाज के में कुह कुह कहते, कभी एक मोर की तरह नृत्य करते और अपने मित्रों को हंसाते। इस प्रकार से कृष्ण बलराम अपने मित्रों को आनंद देते थे, उनके सामने कोई प्रदर्शन करते नृत्य का, अगर कोई मोर जाता सामने नृत्य करते तो कृष्ण बलराम कहते, देखो देखो हमारे सखों, हम अभी मित्र हम नृत्य करेंगे मोर की तरह, तो सामने खड़े रहकर वो भी नृत्य करते और सभी जो मित्र हैं बड़े आनंदित होकर वाह 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 ताली बजा देते, बहुत अच्छा कृष्ण, बहुत अच्छा बलराम, बहुत अच्छा नृत्य किया, अरे तुमने तो मोर से भी अच्छा ज्यादा नृत्य किया है। और भी जब ऐसे प्रशंसा होती कृष्ण बलराम की, दोनों को बड़ा अच्छा लगता, आनंद से वो ऐसी लीलाएं करते रहे। और कभी कभी जब खेलते खेलते गाय इधर उधर दूर चले जाते थे तो गंभीर आवाज में बड़े प्रेम से कृष्ण बलराम अपने गायों को वापस बुला लेते। इस तरह से सुखदेव गोस्वामी बड़े विस्तार में लीला करते हैं। अभी समय तो नहीं है कि सारे लीलाओं का वर्णन करें, लेकिन खैर संक्षेप में वर्णन करने का प्रयास करेंगे कि जब वो थोड़े पशुओं को देखते थे, जैसे खरगोश है, खरगोश मतलब रैबिट, तो खरगोश उनको देखकर गायों को देखकर भाग जाता था, तो कृष्ण और बलराम भी इसी प्रकार से उनका नकल करते, वो भी भागने के लिए तैयार हो जाते जैसे खरगोश भागता है घबराहट में। तो ऐसे देखिए जब भगवान ऐसे लीलाएं करते हैं तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि देवी देवता भी भ्रमित हो जाएंगे। मान लीजिए कोई बड़ा आदमी, कोई मंत्री या कोई बड़ा प्रधानमंत्री राजा हो, वो कहीं जंगल में जाके या कहीं ऐसे सड़क पर जाके ऐसे बच्चों के साथ खेल कूद करे, कुत्तों को जाकर भौंके उसके सामने, वो पत्थर मारे बिल्ली को, वो बड़ा आदमी हो तो लोग सोचे अरे क्या है ये, क्या कर रहा है ये, लोग भ्रमित हो जाएंगे। अगर आप उसे कहेंगे ये प्रधानमंत्री है, अरे कैसे हो सकता है, कोई विश्वास करेगा कोई वहां ऐसी तरह के कार्य कर रहा हो। और ये तो एक देश के राजा प्रधानमंत्री है, और यहाँ पे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के राष्ट्रपति हैं जगदीश जगन्नाथ, और वो यहाँ पर ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। खरगोश भाग के जा रहा है, वो भी खरगोश की तरह भाग के जा रहा है, अपने चार हाथों पैरों पे ऐसे करके जा रहे हैं, और देवी देवतागण सब देख रहे हैं ये। और कई देवता भी भ्रमित हो जाते हैं कि क्या चल क्या रहा है, ये क्या हो रहा है, ये भगवान है कि नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी ने पहले, आपको याद होगा 2 साल पहले ब्रह्म विमोहन लीला हमने चर्चा की थी, ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए थे। और ब्रह्मा जी ने जब प्रार्थना की थी तो उन्होंने क्या कहा था, अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौ कुसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ब्रह्मा जी ने कहा था अहो भाग्य है किनका, नंद गोप व्रज उकसाम, नंद का, नंद महाराज का, इन गोपों का, और जो भी व्रज के निवासी हैं व्रज उकसाम, इनका क्यों, इनका भाग्य है क्योंकि इनके बीच में यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम, पूर्ण ब्रह्म परम ब्रह्म भगवान उनके मित्र बनकर आए हैं और ऐसे साधारण से साधारण कार्य कर रहे हैं, कितना सौभाग्य है उनका। तो इसलिए ऐसे लीलाएं जब भक्त सुनते हैं पढ़ते हैं तो फिर क्या होता है, उनका हृदय प्रेम से भर जाता है भगवान के प्रति। और अब किस तरह से कृष्ण भगवान बलराम की सेवा करते थे यहां पर हम देख सकते हैं। कोई पकड़ेंगे इसको ऊपर या टेबल के ऊपर रख दीजिए ताकि सभी लोग देखें। टेबल यहां पर लाकर, यहां इस तस्वीर में आप क्या देख रहे हैं? बलराम जी विश्राम कर रहे हैं। क्यों विश्राम कर रहे हैं? थक गए हैं। देखिए हम कोई ज्यादा, अभी देखिए लक्ष्मी नारायण प्रभु वो भारी पुस्तक ये कर रहे हैं, कितने देर खड़े थे, थक गए अभी, क्योंकि इतना बड़ा पुस्तक है, एक इतने बड़े बड़ा भारी एक पुस्तक को पकड़ के हम थक जाते हैं। हालांकि हम इतने शक्तिशाली भी क्यों ना हो, हम थक जाते हैं। तो कल्पना कीजिए पृथ्वी लोक को धारण करना कितना कठिन होगा, कठिन होगा कि नहीं? अगर हमें कहा जाए पृथ्वी लोक को धारण करो कितना कठिन होगा, और कहा जाए सारे ब्रह्मांड को धारण करो, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण करो, वो हमारे लिए असंभव है, लेकिन बलराम के लिए असंभव नहीं है, बहुत आसान। कितना आसान है? जैसे रुई के दाने हैं वो अपने फनों पर रखते अनंत शेष, वैसे उनको लगता है हर एक ब्रह्मांड, कोई कठिनाई नहीं होती। अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण करते हुए भी उनको कोई थकावट नहीं होती है, लेकिन यहां वन में खेलने के बाद थकावट हो जाती है। देखिए ये है भगवान की लीला। और थके हुए हैं, थक कर क्या करते हैं, विश्रांति कर, विश्राम कर लेते हैं। क्वचित् क्रीड़ा परिश्रांतं गोपोत्संगोपबर्हणं स्वयं विश्रमयत्यारं पादसंवाहनादिभिः। क्वचित् कभी कभी, क्रीड़ा परिश्रांतं कभी कभी, क्रीड़ा करते करते परिश्रांतम मतलब कभी थक जाते थे, गोप उत्संग उपबर्हणम, गोप किसी सखा के, उत्संग मतलब उनके गोदी में, उपबर्हणम मतलब उसको एक तकिया बनाकर, स्वयं विश्रमयति अर्यम आर्यम, आर्यम मतलब बड़े भाई, तो कृष्ण स्वयं विश्रमयति उनको अपने थकावट से दूर करते थे। कैसे दूर करते थे? पाद संवाहनादि भी, पाद संवाहन मतलब उनके इनको चरण कमलों को मालिश करते थे, आदि भी मतलब अन्य सेवाएं भी करते थे जैसे पंखा देना। तो देखिए कृष्ण भगवान अपने बड़े भाई बलराम की सेवा कैसे कर रहे हैं। आप यहां क्या देख रहे हैं, बलराम जी और कृष्ण है दोनों। आपको कैसे पता चला कि बलराम लेटे हुए हैं कृष्ण नहीं लेटे हैं? शरीर की कांति, बलराम जी कौन से वर्ण के हैं, गौर वर्ण? बलराम जी का वर्ण कौन सा है? श्वेत वर्ण, सफेद, बहुत गोरे हैं वो। और कृष्ण सांवले हैं, श्याम वर्ण। इससे हम पता कर सकते हैं, नहीं तो दिखने में दोनों एक समान दिखते हैं। तो बलराम जी सोए हुए हैं, यहां बताया है ना, गोप उत्संग बरहण, हम अपने एक ग्वाल बाल मित्र के गोदी में सर लगाकर उसको तकिया बनाकर सोए हुए हैं। क्यों? थक गए हैं। और कृष्ण बलराम क्या कर रहे, कृष्ण क्या कर रहे हैं, पाद संवाहन उनके चरणों को दबा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं बलराम जी की। ये है सुंदर लीलाएं जो उनके बीच में चला करती थी। तो सुखदेव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी बताते हैं ऐसे सुंदर लीलाओं को का स्मरण करके साथ साथ में हमारे जप का, हमारे कीर्तन का स्वाद इत्यादि बहुत बढ़ सकता है। और इस प्रकार से कभी कभी ग्वाल बाल मित्र आपस में खेलते कूदते झगड़े करते, कभी नाचते कभी गाते, और इस प्रकार से कृष्ण बलराम हाथ में हाथ थमाकर वो अपने मित्रों को की प्रशंसा करते हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा तुमने कुश्ती किया, नहीं नहीं ये जीत गया, तुम हार गए, देखो सुदामा तुम जीत गए और ये सुबल हार गया। जजमेंट रेफरी बनते कभी कभी, कभी कभी प्रशंसा करते कि अरे मधुमंगल तुमने तो बहुत अच्छा नाच लिया अभी, या तो श्लोक कृष्ण बहुत सुंदर गीत गाया तुमने, तुम्हारे जैसे तो सारे ब्रह्मांड में कोई गाने वाला नहीं है, इतना सुंदर तुमने गाया है। तो कृष्ण बलराम दोनों ऐसे खड़े होकर उनके मित्रों का नृत्य गान खेल कुश्ती इत्यादि देखते, और कभी कभी दोनों सर्वलोकपाल को कभी इन क्रीडाओं में खुद शामिल भी हो जाते थे। और कभी कभी बलराम कृष्ण की सेवा करते, वो आप दूसरा करेंगे। पिछले तस्वीर में आपने क्या देखा, बलराम की सेवा कौन कर रहे थे, कृष्ण, और अभी यहाँ क्या चल रहा है, बलराम जी कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। किस समय कर रहे हैं, जब कृष्ण भगवान थक गए हैं। क्वचित् पल्लवतल्पेषु नियुद्धाश्रमाकर्षितः वृक्षमूलाश्रयः शेते गोपोत्संगोपबर्हणः। तो जब भगवान श्री कृष्ण अपने क्रीड़ा से थक जाते, नियुद्धाश्रमाकर्षितः मतलब युद्ध करके थक जाते थे, अपने मित्रों के साथ कुश्ती करते कभी झगड़ा करते, वैसे कृष्ण भगवान के एकमात्र भवों को ऊपर करने से अनंत कोटि ब्रह्मांड नष्ट हो सकते हैं, केवल ऐसे आंख कर दिया अनंत कोटि ब्रह्मांड नष्ट हो गए, ये शक्ति उनके अंदर है। लेकिन छोटे से बच्चों के साथ कुश्ती करके थक गए हैं वो, इतनी शक्ति उनकी खत्म हो गई, शक्ति क्षीण हो गई, अभी थक गए हैं, थोड़ा उनको आराम की आवश्यकता है, अभी लेटे हुए हैं। ये है भगवान की लीला। वृक्ष मूलाश्रय शेते, वृक्ष के मूल के पास में लेटे हुए हैं और एक गोप को के गोदी को अपना तकिया बनाए हुए हैं। इस प्रकार से लीलाएं चलती रहती थीं। इससे हम समझ सकते हैं कि वास्तव में ये लीलाएं कितनी अद्भुत हैं। तो जो व्यक्ति इन लीलाओं में शामिल थे वो किस तरह के व्यक्ति होंगे, कौन से व्यक्ति थे, वो बच्चे थे क्या, गांव के बच्चे थे, कभी स्कूल में नहीं गए, देखिए ये बच्चे हैं अनपढ़ थे, कभी स्कूल में नहीं गए, ऐसा कोई वर्णन नहीं आता कि ये गोपगण सब बच्चे स्कूल में गए। कृष्ण बलराम आगे चल के उज्जैन में सांदीपनि मुनि के गुरुकुल में गए, लेकिन वृंदावन के जो लड़के हैं वो कभी गुरुकुल में गए ऐसा तो वर्णन नहीं आता, अनपढ़ थे, छोटे से गांव के बच्चे थे, लेकिन इनका भाग्य क्या था, कौन थे ये, ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं, इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरतारकेण साकं विजहरु कृतपुण्यपुञ्जाः। इनके बारे में बताया जाता है, इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या, कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जो भगवान को निराकार समझते हैं और ब्रह्म सुख का अनुभव करने के लिए वो निराकार की उपासना करते हैं। इत्थं सतां, ऐसे कोई ऋषि मुनि होते हैं जो ब्रह्म सुखानुभूत्या ब्रह्म सुख का अनुभव करने के लिए प्रयत्न करते हैं। दास्यम गतानाम परदैवतेन, कई लोग ऐसे होते हैं जो परम सत्य को अपना स्वामी समझते हैं, परदैवतेन, और उनकी आराध्य बहुत ही ऐश्वर्य भाव से आराधना करते हैं। थोड़े लोग ऐसे होते हैं मायाश्रितानाम, जो कि माया के आश्रय में हैं और सोचते हैं कि कृष्ण नरदारकेण, एक साधारण मनुष्य का बच्चा है, मतलब कृष्ण एक मनुष्य है, कई लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन ये कौन थे? साकम विजहरु कृत पुण्य पुंजा, ये बच्चे जो कि कृष्ण भगवान के साथ में खेल रहे हैं, उसको उनको अपना मित्र मानकर कृत पुण्य पुंजा, इन्होंने कोटि कोटि जन्मों की सुकृति पुण्य एकत्र करने के फल स्वरूप ये सौभाग्य प्राप्त किया है। तो ये पूर्व जन्मों के बहुत बड़े बड़े भक्त ऋषि मुनि हुए हैं, जिनको अब भगवान कृष्ण और बलराम का निजीय संग प्राप्त हुआ है, और उनके संग में आकर ये ऐसे सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। तो इन ग्वाल बालों को हमें कभी साधारण नहीं समझना चाहिए। तो एक बार ऐसे हुआ कि श्रीराम, श्रीदामा और स्तुबल, स्तोक कृष्ण, ऐसे उनके ग्वाल बाल मित्रों के नाम है, मधुमंगल इत्यादि। ये सुदामा, वो सुदामा विप्र नहीं है, ग्वाल बालों में भी सुदामा श्रीदामा इत्यादि हैं, वो सुदामा अलग है। तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, श्रीदामा नाम गोपालो राम केशव यो सखा सुबलस्तोक कृष्णाद्या गोपा प्रेमेदम अब्रुवन। एक बार श्रीदामा नाम गोपालो, ऐसे गोपाल था जिसका नाम था श्रीदामा, राम केशव यो सखा, राम मतलब बलराम, बलराम और केशव श्री कृष्ण का सखा था, वो मित्र था, और सुबल और स्तोक कृष्ण ये भी कृष्ण बलराम के मित्र थे। एक बार गोपाह प्रेम नेदम अब्रुवन, बड़े प्रेम से वो कृष्ण और बलराम से कहने लगे। क्या कहने लगे? उनकी कोई इच्छा थी, वो इच्छा व्यक्त करना चाहते थे। राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबर्हण इतो विदूरे समहत वनम तालाली संकुलम। हे राम, राम मतलब बलराम, राम राम महाबाहो, हे राम राम, हे बलराम, जिसकी बड़े शक्तिशाली भुजाएं हैं, तुम्हारी भुजाएं इतने शक्तिशाली हैं, तुमने बहुत बड़े बड़े असुरों का वध किया है, और हे कृष्ण, तुमने तो बहुत सारे असुरों का वध किया है, दुष्ट निबर्हण इतो अविदूरे, इधर से ज्यादा दूर नहीं, अविदूरे सुमहत वनम, वहां बहुत सुंदर और बड़ा वन है, और इस वन में क्या है, संकुलम भरा हुआ है, किस चीज से, ताल आली, ताल वृक्षों से भरा हुआ है, ये ताल वृक्षों का आनंद लेना चाहते थे ग्वाल बाल। ये ताल वन नाम का एक वन है ब्रज भूमि में। वैसे वृंदावन में बहुत सारे, ब्रज भूमि में बहुत सारे वन हैं, इनकी गणना हम नहीं कर सकते। इनमें से 12 वन प्रमुख माने जाते हैं, और भी कई उपवन हैं, 108 उपवन हैं, और भी छोटे वन कितने सारे हैं वो तो भगवान ही जाने, लेकिन प्रमुख जो वन हैं वो 12 माने जाते हैं। केशी घाट वंशी वट द्वादश कानन यहां सब लीला कोयलो श्री नंद नंदन। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं द्वादश कानन, ये 12 वनों में नंद नंदन श्री कृष्ण ने बलराम के साथ में बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं किए, और ये 12 वनों में से जो 7 वन हैं वो यमुना के पश्चिमी भाग में हैं, और 5 वन यमुना जी के पूर्व के भाग में हैं। तो ताल वन ये भी एक वन है जो कि यमुना जी के पश्चिमी भाग में है, और ताल वन में सुंदर सुंदर ताल के वृक्ष हैं जो खाने के लिए बड़े स्वादिष्ट हैं। तालवन वैसे मथुरा और गोवर्धन के बिल्कुल बीच में पड़ता है। आप ऐसे जो वृंदावन गए हैं आपको स्मरण होगा कि वृंदावन से कहीं आगे है मथुरा, मथुरा और गोवर्धन दोनों दूर में हैं, और इन दोनों के बीच में ये तालवन पड़ता है। और यहाँ ताल वन में क्या था जो कि इन ग्वाल बालों को आकर्षित कर रहा था, आइए सुनते हैं इन ग्वाल बालों के शब्दों में।
फलानि तत्र भूरीणि पतन्ति पतितानि च सन्ति किन्त अवरुद्धानि धेनुकेन दुरात्मना।
फलानि तत्र भूरीणि, वहां पर बहुत सारे भूरी भूरी बहुत सारे फल हैं। फलानि तत्र भूरीणि, कौन से फल? ताल के फल। पतन्ति पतितानि च, जो गिरे भी हैं, पतितानि गिरे हुए भी फल हैं और ऐसे हैं जो गिरने भी वाले हैं। संति किंतु अवरुद्धानी, लेकिन उनके उनका संरक्षण कोई एक आदमी कर रहा है। दुरात्मना, बड़ा दुष्ट आदमी है वो, और उसका नाम क्या है? धेनुकेन, उसका नाम है धेनुका, धेनुका असुर, यह असुर है। और उसका परिचय क्या है, ये कौन है ये धेनुकासुर? ये ग्वाल बाल कृष्ण और बलराम को परिचय दे रहे हैं उस असुर का, जो कि ताल वन में रहकर इन ताल वृक्षों का संरक्षण कर रहा है। तो क्या है इसका परिचय?
सोति वीर्यो सुरो राम हे कृष्ण खर रूप धृक आत्मतुल्य बलैर अन्यैर ज्ञात भीर बहु भीर व्रतः।
सह अति वीर्यः, हे कृष्ण हे बलराम, सोचे छोटे छोटे बालक, छह साल के बालक हैं, तो छह साल के बच्चे कैसे बात करते हैं? और अगर कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है तो छह साल के बालक आपस में बात करते हैं तो कैसे बात करेंगे आपस में? वहां एक आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा शक्तिशाली आदमी है। सह अति वीर्यः, बलवान है वो, असुरो बड़ा असुर है वो, हे राम हे केशव। और उसने क्या किया है? घर रूप दृक, घर मतलब गधा, उसने गधे का रूप धारण किया है। आत्मतुल्य बलैर अन्य, और उसके साथ में अन्य भी हैं, ज्ञात भी ही, उसके मित्र आत्मतुल्य बले भी, उसके जैसे ही बलवान है उसके मित्र, और उनसे घिरा हुआ है ये धेनुकासुर। मतलब ग्वाल बाल कृष्ण बलराम को बता रहे हैं कि ताल वन में ये धेनुकासुर है जिसने गधे का रूप धारण किया है, और उसके साथ इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे बलवान असुर हैं जिन्होंने भी गधे का रूप धारण किया है। और क्यों घबरा रहे हैं ये धेनुकासुर से वर्णन करते हैं कि क्यों ये घबराने लायक है।
तस्मात् कृत नराहाराद भीत निभिर अमित्रहान न सेव्यते पशु गणे पक्षी संघैर विवर्जितम।
ये इतना भयंकर है हे कृष्ण हे बलराम, कृत नर आहाराद, नर आहार, नर को आहार बना दिया, मतलब मनुष्यों को भी वो खाते हैं। ये इतने भयंकर है, इतने भीषण है ये असुर, इसलिए भीते निभीर सारे मनुष्य वहां नहीं जाते हैं, पशु भी नहीं जाते हैं वहां पर। न सेवते पशु गणे ही, पशुओं की बात मनुष्यों की बात तो दूर है, पक्षी संघर विवर्जितम, धेनुकासुर के डर से पक्षी लोग भी तालवन के ऊपर से उड़ते नहीं हैं, इतना भयंकर असुर है ये। तो धेनुकासुर वैसे है कौन, इसका परिचय क्या है? तो गर्ग संहिता में ये वर्णन आता है कि बलि महाराज का एक पुत्र था जिसका नाम था साहसिक। बलि महाराज के कई पुत्र थे। आप तो जानते हैं कि बलि महाराज हालांकि असुर कुल में पैदा हुए थे, फिर भी भगवान के बड़े भक्त थे। उनकी विशेषता क्या है बलि महाराज की? आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदनम, नवधा भक्ति के एक अंग आत्मनिवेदन से उन्होंने परिपूर्णता प्राप्त कर ली। बलि महाराज के पिता कौन थे? विरोचन, और विरोचन के पिता प्रहलाद। तो देखिए प्रहलाद के पोते थे बलि महाराज, और खुद बलि महाराज इतने बड़े भक्त थे, लेकिन उनका पुत्र जिसका नाम था साहसिक वो उनके जैसा नहीं था। तो एक बार गंधमादन पर्वत के पास ये साहसिक गया, अकेला नहीं गया, 10,000 नव युवतियों को साथ में लेकर गया वहां रमण करने के लिए, एक नहीं दो नहीं 10,000। और वहां रमण करते करते बहुत जोर जोर से आवाज कर रहा था, और उस समय वहां पर एक मुनि बैठे थे, और साहसिक के भाग्य में लिखा था कि वो मुनि दुर्वासा मुनि होने थे। अब दुर्वासा मुनि के बारे में तो आप जानते हैं, दुर्वासा मुनि के क्या गुण है, जल्दी से क्रोधित हो जाते हैं, जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से साहसिक ऐसे कोई कार्य नहीं कर रहा था जिससे कि दुर्वासा मुनि प्रसन्न हो, और उसने ऐसे कार्य किए जिससे दुर्वासा मुनि बड़े क्रोधित हो गए, क्योंकि उनकी तपस्या भंग हो गई। तो उन्होंने शाप दिया, हे मूर्ख, तुम गधे जैसे आदमी हो, क्योंकि गधे जैसे आवाज कर रहे हो यहां सब इनके संग में, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हें गधे का जन्म मिले, तुम असुर बनो और गधे का जन्म स्वीकार करो। अक्सर ऐसे ही होता है, जब ऐसे बड़ा शाप मिल जाता है तो उनके होश ठिकाने आ जाते हैं, जैसे नलकुवर मणिग्रीव का हुआ, कितने सारे लोगों का हुआ, शाप पड़ गया तो साहसिक के होश ठिकाने आ गए, तुरंत कृपा याचना करने के लिए दुर्वासा मुनि के सामने आए। तो उस समय दुर्वासा मुनि ने कहा, ठीक है, मैं शाप थोड़ा कुछ परिवर्तित कर सकता हूं, पूरी तरह से बदल नहीं, पूरी तरह से उसको वापस नहीं ले सकता, तो ठीक है, अभी मैं ये कह सकता हूं कि कई साल बाद जब मथुरा मंडल में तालवन नामक बहुत पवित्र स्थान में बलराम जी वहां प्रवेश करेंगे तो वो तुम्हारा वध करेंगे, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, नहीं तो और कोई उपाय तुम्हारे लिए नहीं होगा। तो इस प्रकार से साहसिका को थोड़ा बहुत आनंद हुआ कि ठीक है, कम से कम बलराम जी स्वयं भगवान के हाथों से हमारा उद्धार हो जाएगा, और इस तरह से धेनुकासुर का जन्म हुआ और वही साहसिका धेनुकासुर बन गए। ये धेनुकासुर का इतिहास है। तो ये सारे जो भी बड़े बड़े असुर हैं, इनका इसी तरह का कोई ना कोई ऐसे कहानी है इनके पीछे, ऐसे ही इतिहास इन सब का है। तो खैर, ये सारे धेनुकासुर अपने साथ अपने भयंकर असुर मित्रों के साथ बैठे थे, और कृष्ण भगवान ने सोचा कि चलो मेरे मित्रों की इच्छा पूरी करनी चाहिए। उधर ग्वाल बाल मित्र सोचने लगे कि कृष्ण और बलराम इन्होंने तो अघासुर बकासुर ऐसे बड़े बड़े राक्षसों का असुरों का वध किया है, और एक बड़ा गधे के रूप में असुर है उसका वध करने के लिए इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और इसलिए ग्वाल बाल चाहते थे कि हम लोग जाकर वहां से सुंदर ताल वृक्ष को चखें, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कृष्ण बलराम को सुंदर लीला करते हुए हम देखें। तो आगे क्या कहने लगे ग्वाल बाल, विद्यन्ते भुक्त पूर्वाणी फलानि सुरभीनि च एष वै सुरभिर्गन्धो विशुचिनो वगृह्यते। विद्यन्ते, वहां पर अभुक्त पूर्वाणी फलानी, वहां ऐसे फल हैं, हे कृष्ण हे बलराम, जो पहले कभी खाए नहीं हैं, खाए गए नहीं हैं, इतने स्वादिष्ट है वो। सुरभिणी च, उनका गंध इतना मधुर है कि आज तक किसी ने नहीं लिया है, और हम देख रहे हैं कि ये गंध सब जगह फैल रहा है। हे बलराम, तुम बड़े शक्तिशाली हो, हे कृष्ण, तुम भी दुष्टों का दमन करने में बड़े निपुण हो, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए ये फल लेकर आएं। हमारा मन जो है इस गंध से इतना आकर्षित हो रहा है कि हम हमारा मन इसे हटा नहीं पा रहे हैं, तो अगर आप उचित समझो, इस प्रस्ताव को ठीक समझो, तो चलो हम सब वहां चलते हैं, और हम भी वहां ताल वन में ताल फलों का आनंद लेते हैं। वैसे इन ग्वाल बालों को कृष्ण और बलराम के ऊपर पूरी श्रद्धा थी, अटूट श्रद्धा, पूरा विश्वास था कि ये उनकी रक्षा करने वाले हैं। इसके लिए आप कोई उदाहरण दे सकते हैं कि कृष्ण और बलराम को किस तरह से पूरी श्रद्धा थी? अघासुर के मुंह में चले गए, बिल्कुल। अघासुर असुर था जिसने क्या रूप धारण किया था? एक सांप का। अब मान लीजिए कोई असुर ने अपना सांप ने बड़ा अपना मुंह खोल लिया है, कोई शेर हो, असुर हो, और कोई दूसरा भक्त आपको कहे, कोई भी कहे, चलो उस मुंह के अंदर जाओ, हम जाते कोई कोई नहीं जाएगा। आजकल यहां इतने खतर कुत्ते भी इतने खतरनाक हो गए, कुत्ते के सामने भी आजकल कोई नहीं जाएगा। तो बड़े बड़े जो सांप ने उसने मुंह इतना बड़ा कर दिया है, जो ग्वाल बाले ने एक बार भी सोचा नहीं, कह रहे हम एक बड़े जहरीले सांप के मुंह के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, सोचा नहीं। कृष्ण है, बलराम है, हमें क्या चाहिए, किस बात की चिंता है? रक्षिष्यति इति विश्वासो, ये है श्रद्धा, ये है शरणागति के लक्षण, पूरी तरह से अटूट श्रद्धा होना कि कृष्ण मेरा संरक्षण करने वाले हैं। इसलिए उनको कोई भीति नहीं थी, कोई भय नहीं थी, और अघासुर के मुंह में चले गए, बकासुर के सामने भी आए, सीधे सामने चले गए, कोई डर नहीं था उनको। और इसी तरह से उनको मालूम था कि कृष्ण बलराम जब तक मेरे साथ में हैं, तो धेनु का असुर क्या, कौन कोई कुछ नहीं कर सकता है हमको। और ये श्रद्धा के साथ वो आगे चलते गए। वास्तव में वो इन सुंदर मीठे फलों के इतने लालसी नहीं थे जितने कि वो कृष्ण भगवान के सुंदर लीलाओं को देख रहे थे, क्योंकि ये ग्वाल बाल कोई साधारण चीजों के पीछे भागने वाले कोई व्यक्ति नहीं थे। इतनी सारी तपस्या उन्होंने इन पूर्व जन्मों में की हुई थी। तो जब कृष्ण और बलराम ने अपने ग्वाल बाल मित्रों का जो है प्रस्ताव सुना, उनकी मधुर वाणी सुनी, तो उन्होंने क्या किया, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। एवं सुहृत वचः श्रुत्वा सुहृत प्रियचिकीर्षया प्रहस्य जग्मतुर्गोपैर् व्रतौ तालवनम् प्रभु। एवं सुहृत वचः श्रुत्वा, सुहृत मतलब सुहृत, जो हमारे हृदय के बहुत करीब हैं, हमारे बहुत प्रिय मित्र। एवं सुहृत वचः श्रुत्वा, जब कृष्ण और बलराम ने अपने प्रिय मित्रों के वाणी को सुना, तो उन्होंने क्या सोचा, सुहृत प्रिय चिकीर्षया, उन्होंने सोचा कि हमारे मित्रों को हमें आनंद देना चाहिए। प्रहस्य जगमतुर गोपेर, प्रहस्य हसे कृष्ण और बलराम, व्रतौ तालवनम प्रभु, और चले अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ तालवन की ओर। तो भगवान की हंसी, भगवान की मुस्कान कितनी सुंदर बात है कि जब भक्तों के संग में भगवान श्री कृष्ण एक बार मुस्कुराते हैं तो उनके सारे दुख मिट जाते हैं। कपिल देव कहते हैं श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में, हासे मरर अवनिता अवनित अवनिता खिल लोक तीव्र शोकाशुसागर विशोषण मत्युदारम। वो कहते हैं हासम हरेर, भगवान श्री हरि की हंसी ऐसी है कि जो व्यक्ति अवनता उनके सामने आके नमन करता है, उसके लिए अखिल लोक तीव्र शोक अश्रु सागर, वो भी सूख जाता है। सारे जगत का अखिल लोक तीव्र शोक, सारे ब्रह्मांड का सारा तीव्र शोक से कोई व्यक्ति आके उसके अश्रु आ जाए, उस अश्रु का सागर हो जाए, विशोषण उसको सुखा सकता है। क्या? एक भगवान श्री कृष्ण की मुस्कान। कौन है वो व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण के सामने नमन करते हैं? उनके भक्त। और अगर उनको भक्तों को कितना दुख हो, सारे ब्रह्मांड का दुख बड़े तीव्रता से आ जाए और इस दुख से एक आंसू का सागर बन जाए, तो कृष्ण भगवान के एक मुस्कान से ये सारा सागर सूख सकता है। मतलब क्या है कि भक्त के दुख के लिए आश्रय एकमात्र है। अगर भगवान श्री कृष्ण एक बार मुस्कुराए तो हमारे सारे दुख खत्म हो गए। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, आप सब जानते हैं। छोटा बच्चा होता है, सारे कुटुंब के लोग, सारे रिश्तेदार जब घर में मिल जाते हैं, सोशल गैदरिंग होता है, रिश्तेदार मिलते हैं कोई खास वजह से, सभी लोग छोटे बच्चे की इर्द गिर्द 10-20 लोग एकत्र हो जाते हैं, और एक बार वो छोटा बच्चा हंस देता है तो बाप रे, इतना सब लोग खुश हो जाते हैं उस एक बच्चे के खुशी से, है ना। एक बार वो बच्चा मुस्कुराया तो सभी के दुख दूर हो जाते हैं, सारे परिवार के लोग। एक छोटे से बच्चे के साथ ऐसे होता हो तो कृष्ण भगवान अगर ऐसे करें, एक बार मुस्कुराए हमारे ऊपर, तो फिर सारे संसार के दुख हमारे दूर हो सकते हैं। तो अगर हम दुखी हैं तो हमें कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। कृष्ण भगवान प्रसन्न हुए, हमारे सारे दुख मिट जाएंगे। हम में से कौन दुखी नहीं है, कोई हाथ ऊपर उठा सकते हैं? कोई है? कोई नहीं। लेकिन अभी आप सब सुखी हो गए हैं क्योंकि आप कृष्ण के भक्त हैं। कृष्ण भगवान की मुस्कान इतनी मधुर है, बहुत मीठा है, इसलिए वल्लभ आचार्य कहते हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम। मधुराधिपति भगवान श्री कृष्ण ये माधुर्य के विश्व सम्राट हैं, और उनके बारे में जो भी कुछ है वो मधुर है। उनके अधर मधुर हैं, उनका चेहरा वदनम मधुर है, उनकी आंखें नयनम मधुर है, हसितम मधुरम उनकी जो मुस्कान है वो भी मधुर है, उनका हृदय मधुर है, उनकी चाल गमनम वो भी मधुर है। सबको जो भी भगवान कृष्ण के संबंध में है वो सब मधुर है। इस प्रकार से भक्तों ने, कवियों ने वर्णन किया है। तो ग्वाल बाल जब कृष्ण भगवान की एक मुस्कान देखते हैं, बस उनका दिन बन जाता, और दिन भर कृष्ण बलराम उनके साथ में रहकर हंसी मजाक करते खेलते, तो इन ग्वाल बाल मित्रों के आनंद की सीमा की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से बलराम जी वहां आए पहले, और उन्होंने देखा कि सारे ताल वृक्ष जो हैं, इनमें बहुत सुंदर सुंदर संतरे के रंग के फल हैं। ताल वृक्ष छोटे 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 फल हैं, लेकिन इतने पास पास में हैं कि ऐसे लग रहा है कि मानो एक बड़ा फल है, और इतने भारी थे कि वो ताल वृक्ष हालांकि इतने मजबूत थे, इतने लंबे थे, बड़े थे, फिर भी वो झुक गए थे इनके बोझ से, और ऐसे लग रहा था कि ये ताल वृक्ष इतने ऊंचे हैं कि मानो वो गगन को चूम रही हैं, और उनका गंध इतना मधुर कि जो हवा है वो भी उनका संग लेने के लिए आ रहा था और उनको छोड़ के गंध लेकर जा रहा था। ऐसे कवि कर्णपुर भी वर्णन करते हैं। तो पहले बलराम जी वहां अंदर आए, बलराम जी ने अपने भुजाओं से ताल वृक्ष को हिलाना शुरू कर दिया, और इतने जोर से हिलाया कि सारे जो ताल वृक्ष हैं धड़ 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 वो नीचे गिरने लगे। आवाज आई, झाड़ों के हिलने की आवाज, फलों के गिरने की आवाज, और जैसे आवाज सुनी तो धेनुकासुर ने ये को क्रोध आया, कौन मेरे जगह में आ गया है और कौन इन फलों को निकाल रहा है। जैसे कि जब भगवान कृष्ण कालिया हृदय में जमुना जी में कूद गए थे, जो कि जहां की कालिया निवास करता था, और जोर से अपने भुजाओं को थरथराने लगे जानबूझकर, और ऐसे लहरें उत्पन्न हो गई उसमें से, ऐसे उत्पात हो गया जल के भीतर, वहां कालिया जल्दी से भागकर आ गया कि कौन है, किसकी मजाल है कि यहां आकर उत्पात करे मेरे घर में, मेरे घर के ऊपर आक्रमण करे, किसकी हिम्मत है। तो उसी प्रकार से धेनुकासुर दौड़ के आ गया, किसकी इतनी हिम्मत है कि मेरे जंगल में आकर मेरे वृक्षों से फूल फल तोड़े।
तो धेनुकासु दौड़ते हुए आ गया और बड़े जोर से अपने पीछे के पैरों से वो लात मार दिया बलराम के वक्षस्थल पे। आप जानते हैं कि गधे कैसे लात मारते हैं ना, गधे कैसे लात मारते हैं, पीछे से मारते हैं, इसलिए गधे के पीछे कभी नहीं जाना चाहिए। हा? पीछे जाने में बड़ा खतरा, कब वो पैर उठाएगा कुछ कहने का मुश्किल है। वैसे कभी कभी गाय बैल भी पीछे से लात मारते हैं, इसलिए बहुत जो गौ सेवा करते हैं उनको कभी कभी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि गाय बैल अचानक घबरा जाती हैं। जो लोग नहीं जानते किस तरह से कार्य करना, अचानक कुछ ऐसे कार्य कर दिया, अचानक पीछे से वो लात मार देती हैं। इसलिए कभी कभी जो है गायों के पैरों को बांध देते हैं जब वो दोहन करते हैं दूध निकालते समय। कृष्ण भी ऐसे जब वन में जाते थे तो उनके कंधों पे वो रस्सी होती थी, कभी कभी उस रस्सी को वो पगड़ी के रूप में पहन लेते थे, रेशम की रस्सी होती थी वो, और उस पगड़ी को कभी कभी जरूरत पड़े तो बाद में वापस आने के बाद गायों के पैर को बांधने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। वैसे होता नहीं था जरूरत, क्योंकि कृष्ण जब आते थे पास में तो गाय स्वाभाविक तौर से दूध देना शुरू कर देती थी। तो खैर पीछे के पैरों से जबरदस्त लात मार दिया बलराम के वक्षस्थल के ऊपर। अगर कोई भी व्यक्ति होता, साधारण व्यक्ति, तो तुरंत वो वहां पर उसका देहांत हो जाता, लेकिन बलराम जी को कुछ नहीं हुआ। दोबारा फिर से वहां वो आया, लात मारकर फिर से इधर उधर घूमने लगा, जोर जोर से गर्जना करने लगा और फिर से आकर आक्रमण किया धेनुकासुर ने बलराम के ऊपर। पहले तो बलराम ने कुछ कहा नहीं, बाद में सोचा कि ये तो अभी हद से बाहर जा रहा है, तो बलराम जी ने क्या किया, अपने बाएं हाथ की उंगलियों से केवल उसके पीछे जो खुर हैं, पैरों के तल हैं, वो पकड़ लिए, पकड़कर ऊपर उठाकर घुमाने लगे, घुमाया 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 घुमाया, फिर फेंक दिया आकाश में। और फेंका तो ऊपर 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 गया धेनुकासुर का शरीर, इतना भारी इतना वजनदार। लेकिन बलराम के लिए क्या है, जब ब्रह्मांडों को उठा सकते हैं तो एक असुर को उठाना कोई बड़ी बात नहीं। ऊपर फेंक दिया और वो ऊपर जा गिरा एक ताल वृक्ष के ऊपर। लेकिन घुमाते घुमाते बलराम ने उतनी तेजी से उनको घुमाया कि प्राण ही निकल गया है धेनुकासुर से। और जब वो ताल वृक्ष के ऊपर पहुंच गया तो मृत अवस्था में था, और उसके वजन से वो ताल वृक्ष जो है वो इतना हिल गया, झुक गया कि वो बाजू वाले वृक्ष के ऊपर आ गिर पड़ा, वो वृक्ष टूट पड़ा। लेकिन जैसे वो वृक्ष टूट पड़ा, दूसरा वृक्ष हिल गया और वो भी टूट पड़ा, और उसकी वजह से तीसरा वृक्ष टूट पड़ा, और ऐसे प्रतीत हुआ कि मानो ताल वन में कोई बड़ा तूफान आया हो। इतने सारे वृक्ष हिल गए, थोड़े बहुत सारे वृक्ष टूट गए, और ये सब हंगामा सुनकर देखकर धेनुकासुर के जो मित्र थे वो वहां भाग कर आए, कृष्ण और बलराम के पास आक्रमण करने आए। सुखदेव गोस्वामी